તારીખ 8-9-1992 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ગ્વાલિયરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 27
સુનતે હૈ ઉનકો અધિક લાભ હોતા હૈ યે બાત હૈ સન્મુખતા મેં સ્વરૂપ સન્મુખતા મેં અંતિમ પરિણામ દેખના હૈ યા મૂળ કારણ દેખના હૈ જૈસે પરિણામો મેં તો ભિન્ન ભિન્ન જીવો કો કોઈ સ્પેશિયલ નિયમ નહીં હૈ કે વહી પરિણામ હોના ચાહીએ જૈસે કે વિકલ્પ અનેક પ્રકાર કે હૈ વિકલ્પ કે વિષયભૂત ભેદ ભી અનેક પ્રકાર કે હૈ જૈસે આત્મા હૈ તો ઉસકો આત્મા ભી કહેતે હૈ દ્રવ્ય ભી કહેતે હૈ પરમાત્મા ભી કહેતે હૈ ધ્રુવ ભી કહેતે હૈ તો ઉસમેં સે કોનસા વિકલ્પ હોના ચાહીએ યે કોઈ નિયમ નહીં હૈ ઉતના નિયમ અવશ્ય હૈ કે જૈસા સ્વરૂપ હૈ ઉસકી પહેચાન હોની ચાહીએ ઉતના નિયમ અવશ્ય હૈ કે જો ભી અંતિમ પરિણામ હોતે હૈ વો શુદ્ધને કે વિષયભૂત તત્વ કા હોતા હૈ વ્યવહારની કે વિષયભૂત તત્વ કા નહીં હોતા ઇતના નિયમ હૈ લેકિન ફલાણા વિકલ્પ હોના ચાહીએ એસા કોઈ નિયમ નહીં હૈ મૂળ કારણ આત્મા હૈ યાને આત્મા કી પહેચાન હૈ યા પહેચાનને મેં ભી જો ઉનકી જો પ્રત્યક્ષતા હૈ બલ દેતી હૈ ક્યોંકિ પુરુષાર્થ ચાહીએ સ્વરૂપ કી આરાધના મેં તો પુરુષાર્થ ચાહીએ પુરુષાર્થ કહો યા બલ કહો વસ્તુ કી પ્રત્યક્ષતા કે કારણ આતા હૈ પ્રત્યક્ષતા કે કારણ રસ આતા હૈ રસ કે કારણ બલ આતા હૈ તો યહી કારણ હૈ કે જો આરાધના હૈ વો તો પુરુષાર્થ પ્રધાન હૈ જૈસે હમ દ્રષ્ટાંત લે સકતે હૈ કે દો ક્ષાયિક સમય દ્રષ્ટિ જીવ હૈ કિતને દો દોનો ક્ષાયિક સમય દ્રષ્ટિ હૈ દોનો કો ક્ષાયિક સ્રધાન હૈ દોનો કો સમ્યક જ્ઞાન ભી હૈ ફિર ભી સ્વરૂપ સ્થિરતા દોનો કી એક સી નહીં હોગી ક્યા કારણ કે દોનો કે પુરુષાર્થ જીતની માત્રા મેં હૈ ઉસમેં અંતર રહેતા હૈ પુરુષાર્થ તો દોનો કો હૈ સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક દર્શન હોને સે પુરુષાર્થ નહીં હોતા સો તો બાત નહીં લેકિન જીતના પુરુષાર્થ ઉતના હી આરાધના મેં સિદ્ધિ કી સમીપતા હૈ અગર પુરુષાર્થ મંદ હૈ તો ઉનકો દેર લગેગી પૂર્ણ સિદ્ધિ હોને મેં જિસકો પુરુષાર્થ તીવ્ર હૈ ઉસકો જલ્દી સે મોક્ષ હો જાયેગા તો સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન પ્રાપ્ત હોને કે બાદ ભી મોક્ષ માર્ગ મેં તો પુરુષાર્થ કી હી પ્રધાનતા હૈ પુરુષાર્થ ચાહીએ યે ભાવના કા વિષય હૈ પુરુષાર્થ તો તબ હોગા જબ હમે રસ આયેગા આત્મરસ ઉત્પન્ન હોગા तो रस से बल मिलता है, रस खुद स्वयं परिणाम का बल है। तो जैसे जैसे साधक जीव भी अपने स्वरूप को प्रतीति में प्रत्यक्ष करता है, तैसे तैसे उनका स्वसंवेदन बढ़ता जाता है। ये सिद्धांत दिया है अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी साहब ने। जैसे जैसे ज्ञानी भी प्रतीति में अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करता है, वैसे वैसे उनका स्वसंवेदन और स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है और वो मोक्ष के समीप उतना अधिक जाता है। इसी कारण है कि प्रतीति में प्रत्यक्षता का जो रहना चाहिए, एक ही कारण है, प्रतीति और प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता में प्रतीति नहीं होवे ऐसा नहीं बने, और प्रतीति में भी प्रत्यक्षता के कारण से ही बल उत्पन्न होता है। जैसे हम एक एक्सीडेंट देखते हैं और फिर किसी ने एक्सीडेंट नहीं देखा, लेकिन एक्सीडेंट ऐसा था कि अखबार वालों ने उस एक्सीडेंट के कई फोटो अखबार में छापे, देखने वाले को जो असर होगी वो चार फोटो देखने वाले को नहीं होगी। देखने वाले को तो एक्सीडेंट देखते हैं तो एक ही फोटो उसको देखने को मिलती है, जहाँ वो खड़ा है वहां से, वो भी ऐसे भयानक दृश्य से दूर हो जाता है, देखते ही दूर हो जाता है। लेकिन फोटो देखने वाले को क्यों रस नहीं आता? जितना प्रत्यक्ष देखने वाले को भाई की प्रकृति हुई, भाई का रस हुआ, करुणता का रस हुआ, क्योंकि ये प्रत्यक्ष चीज है, प्रत्यक्ष का कोई दूसरा पर्याय नहीं है। जैसे हमारे कल्चर का चली आगम और प्रत्यक्ष पुरुष के विषय में, तो प्रत्यक्ष का कोई दूसरा पर्याय नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं बैठता। बाह्य समागम में भी और अंतर स्वरूप प्रत्यक्षता में भी प्रत्यक्षता का कोई दूसरा पर्याय नहीं है, कोई दूसरी अभिजी नहीं है, उसका कोई दूसरे कारण से ऐसा हो ऐसा नहीं बन सकता।
सरकारी सत्ता में जाती नहीं,
हाँ,
और अपने में ही अपना ही निवेदन करती है, अपने में अपना ही निवेदन करती है, और जब अपने में अपना ही निवेदन करती है तो सरकारी सत्ता, जिस सरकारी सत्ता का अवगमन होती है उसको भी अपने में निवेदन करती है।
उसके लक्ष्य से उसमें अहम भाव को धारण करके, भाव तो अपने में धारण करती है, लेकिन इनके विषय होते हैं, स्व और पर अवस्था का विषय होता है, या तो स्वद्रव्य या तो परद्रव्य। अपने आप को विषय नहीं करके अपने मूल स्वरूप को विषय, अपने रूप विषय करके, आप रूप विषय करके वो परिणमन करती है, ऐसी बात है।
के लिए वो तो निमित्त कारण है सरकारी सत्ता।
पर ये खुद तो उपादान कारण है कि नहीं है, पर्याय के षटकारक है। हाँ, वो पर्याय में है कि नहीं? वो पर्याय अपनी उपादान नहीं है क्या? ये प्रश्न तो तब रहता है कि जब पर्याय में उपादान शक्ति नहीं हो तो। लेकिन वो तो बात है ही नहीं। शक्तियाँ त्रिकाली सत्ता में है और व्यक्तियाँ पर्याय में है। इनकी व्यक्तियाँ, इस शक्ति की व्यक्तियाँ तो पर्याय में है। शक्ति शक्ति रूप भी रहती है और उसका परिणमन भी चलता है। तो एक त्रिकाली उपादान है, एक क्षणिक उपादान है। उपादान तो दो ही है। ऐसा नहीं है कि त्रिकाली उपादान है और क्षणिक में उपादान बना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अपनी अपनी स्वतंत्र शक्ति दोनों में है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि ये दो सत है। क्या? ये दो सत है, एक सत नहीं है, दो सत है।
तो फिर वो द्वैत बात का प्रसंग आया।
क्या द्वैत भी है, अद्वैत भी है, और द्वैता अद्वैत भी है। हमारे जैन दर्शन में तो तीनों बात है। केवल अद्वैत होता तो कोई भेद प्रभेद की चर्चा ही नहीं चलती। केवल द्वैत होता तो जितनी पर्याय इतने पदार्थ हो जाते हैं, जितने गुण उतने पदार्थ हो जाते हैं। इसलिए द्वैत भी है, अद्वैत भी है, और द्वैता अद्वैत भी है। तीनों है हमारे यहाँ पर।
ज्ञान के समय में इस तरह के द्वैत लाए जाए तो संवाद करें
क्या?
ज्ञान के समय में, अनुभव के समय में इस तरह के द्वैत दो शब्द रखे जाए तो संवाद करें।
ध्यान के ये सब जो द्वैत के जितने भी प्रकरण हैं वो अन्वेषण काल के हैं, ध्यान के काल के नहीं हैं, पहचान के काल के हैं। एक श्लोक हमने दिया था नए चक्र का, तच्च अन्वेषण कालेन युक्ति मग्गेन ज्ञानाति नो आराहण समय, आराधना के समय में नहीं। इसलिए समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। क्या कहा? तो ज्ञान मात्र माने क्या? कोई ये प्रश्न करेगा कि ज्ञान मात्र मैंने द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? क्योंकि तुम द्रव्य गुण पर्याय के भेद को भूल जाओ। ज्ञान मात्र मैंने ज्ञान मात्र, न द्रव्य है न गुण है ना पर्याय है, इसी को अनुभव स्वरूप कहते हैं, इसी को ज्ञान मात्र कहते हैं।
शास्त्र में कर्म के लक्ष्य का, कर्म के लक्ष्य से पर का लक्ष्य और राग का लक्ष्य, इनमें कोई अंतर रहता है?
प्रश्न क्या है आपका?
कर्म के लक्ष्य का, कर्म कर्म के लक्ष्य का भाव क्या?
द्रव कर्म का लक्ष्य मतलब क्या है कि आत्मा का लक्ष्य नहीं है। आत्मा का लक्ष्य नहीं है उतना ही नहीं, उनको जो भीतर में होता है वहाँ उसका जुड़ान हो जाता है। बिना विचार बिना विकल्प उसका कर्म के उदय के साथ जुड़ना हो जाता है अपने परिणामों का, उसी का नाम द्रव कर्म का लक्ष्य है। आत्म लक्ष्य का अभाव को और कर्म के उदय के साथ बह जाना, जुड़ जाना, ये द्रव कर्म का लक्ष्य है। फिर पर लक्ष्य में तो जो भी अवलंबन का विषय भूत होता है उसी का लक्ष्य गिनने में आता है। सामान्य तौर से आत्म लक्ष्य नहीं होने से पर लक्ष्य होता है। फिर पर लक्ष्य में द्रव्य कर्म हो, राग हो या नौकर्म हो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीन में से कोई भी हो, बस
वो जानने के आदमी खबर चलाता है ना, भी जानता है कभी
जानता है
जानता है तो अपने वास्तव में अपना पद को नहीं जानता, घर को नहीं जानता है, तो पद को जानता है तो पद को नहीं भी जानता है, ऐसी शंका प्रकट हो जाती है।
किसी के कहने से हम क्यों शंका में पड़े, हमारी समझ तो स्वतंत्र होनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, हमारी समझ तो हम स्वतंत्र हमारे से होनी चाहिए, और जो भी वचन है वो वचन शास्त्र के आगम के हैं, तो जिन्होंने ये आगम लिखे हैं वो सही हैं, और जो भी वचन है उसमें इस वचन की मर्यादा होती है, वचन में वचन की भी मर्यादा होती है, तो इन मर्यादा में इस वचन को बढ़ने से कोई या समझने में कोई आपत्ति नहीं, सर्वथा लेने में आपत्ति है। जैसे कि वास्तव में पर जानने में नहीं आता, तो सर्वथा ऐसा लेने में दोष आ जाएगा क्या, तो उसमें स्वपर प्रकाशक में पर पदार्थ का प्रतिभास ही ज्ञान में नहीं आएगा, और पर जानने में नहीं आता है वही पर संबंधित ज्ञान हो गया। जैसे मैं ऐसा कहूं कि मैं पर को सर्वथा नहीं जानता, तो मैंने पर को जाने बिना मैं पर को नहीं जानता ऐसा कहां से कहा, आई नहीं समझ में आई, आई कि नहीं आई आपके समझ में। जैसे कोई ये बोलता है कि भी मैं गूंगा हूं, ऐसा कोई बोलता है, बोल नहीं सकता, मेरे मुंह में जीभ कट गई है, मेरी जीभ कट गई है, मैं नहीं बोल सकता, उतना कहां से बोला। हाँ आई समझ में, नहीं आई। ऐसे पर सर्वथा जानने में नहीं आता, ऐसा कोई सर्वथा कहते हैं तो पर को जाने बिना कैसे कहा कि पर जानने में नहीं आता। पर को नहीं जानता हूं उसमें पर का ज्ञान तो आ ही गया, इसलिए सर्वथा तो वो बात लागू हो ही नहीं सकती, उनके वचन में वो बात नहीं है, कहे तो भी वध तो व्याघात हो जाता है, उसको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, वध तो व्याघात, कि जो अपने वचन को खुद काटते हैं उसमें, अपने जो वचन बोले उसको ही काट दिया उसने।
जानने में आता हुआ भी कहता है क्यों नहीं,
जहां उस पर लक्ष्य नहीं होता, जैसे कि हम अभी आप सुन रहे हैं, आपका उपयोग कहीं और चला गया तो आप ये कहेंगे कि मैंने नहीं सुना, तो क्या हमारे जो बात थी उसकी आवाज कान में नहीं गई थी क्या, कोई कान में ढक्कन आ गया था, कोई पर्दा आ गया था, कोई बात नहीं थी, तो लक्ष्य नहीं है तो सुना अनसुना हो गया, क्या हुआ सुना अनसुना हो गया। ऐसे पर को भिन्न रूप से जानने में, पर को पर रूप से जानने में पर इतना गौण हो जाता है कि जैसे जानने में ही नहीं आता हो, ये इसका अभिप्राय है, ये शास्त्र वचन है कि पर जानने में नहीं आता, वो भी एक शास्त्र वचन है, पर जानने में आता है वो भी एक शास्त्र वचन है, दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है, लेकिन सोच समझकर होना चाहिए। बिना सोचे बिना समझे ऐसे बोल देवे तो वचन सत्य है, लेकिन उनका ज्ञान असत्य है, इसलिए वचन असत्य कह सकते हैं। और जिसका ज्ञान सत्य है इसका वचन सत्य है, जिसका ज्ञान असत्य है इसका वचन असत्य है, बस उतनी सी बात है।
पर जानने में भी अनुभव, पर को जानना तो होता है, ऐसा तो खास वचन में मिलता है, लेकिन पर जानने में नहीं आता है, ऐसा कहीं
नहीं आता है। अनुभव प्रकाश में वो बात आएगी कि निज में आचार्य के ज्ञानी के वचन में कोई अंतर नहीं, वो तो समय सार में कहीं है, लेकिन मैं मुझे मालूम नहीं कहाँ है। गुरुदेव के प्रवचन में भी है, गुरुदेव के प्रवचन में भी है, कहाँ है मुझे पता नहीं। समय सार में भी है, कहाँ है मुझे याद नहीं, स्मृति में नहीं। दो सौ इकोतेर में है, 231 में है, 71 में है शास्त्र में, 231 में है, 258 में नहीं है, 271 में है, वो बराबर है। नहीं ऐसा नहीं है, कलष्टिका ले आइए, उसमें ऐसा लिखा है कि ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय अपने आप ही है। कोई ऐसा मानेगा कि आत्मा ज्ञाता है और छह द्रव्य ज्ञेय है, लेकिन ऐसी भ्रांति अनादि से चली आई है, तो इसमें क्या हुआ कि उसमें सारे समय सार में जो स्वपर प्रकाशकपना किया है उसका निषेध नहीं है, लेकिन परग्ने को जानने के काल में निग्नायक संकर दोष हो जाता है, इसका निषेध है। वहां इसका निषेध है, स्वपर प्रकाशक पने का निषेध नहीं है। क्यों कि आत्मा ज्ञाता और छह द्रव्य ज्ञेय वो जैनागम का विषय है, सिवाय जिनागम छह द्रव्य की कहीं भी स्थापना या प्रतिपादन है ही नहीं। जैन दर्शन के आगम के अलावा कहीं भी छह द्रव्य का प्रतिपादन नहीं है। क्यों कि चार द्रव्य है वो केवल ज्ञानगम्य है, तो धर्म धर्म आकाश काल है वो तो केवल ज्ञान, तो ये जो जिनागम का विषय है वो झूठा है ऐसा कहने का कोई अभिप्राय नहीं है। लेकिन यहाँ आगम का प्रकरण नहीं चल रहा है, अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है, तो जो अध्यात्म की भाषा है और विषय है वो आगम के लेवल से कहीं पर है। क्या वहां अध्यात्म की बात बीच में नहीं घुसेड़ना, जैसे चरणानुयोग में द्रव्यानुयोग को नहीं लाना, द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग को नहीं लाना है, वैसे आगम के विषय में अध्यात्म को नहीं लाना है, अध्यात्म के विषय में आगम को नहीं लाना है। तो ये बात रही छह द्रव्यों को जानने की आगम की, और छह द्रव्यों को नहीं जानता है वो बात रही अध्यात्म की। दोनों ठीक है, जैसे जीव के और पर्याय के प्रदेश एक भी है और एक नहीं भी है, राग के और ज्ञान के प्रदेश एक भी है और एक नहीं भी है, तो आगम अध्यात्म में तो ये बात बनने वाली है। ये आगम अध्यात्म का विषय को समझ लेना, तो वो बात आती है। और अनुभव प्रकाश में तो दृष्टांत दिया है कि मयूर पाषाण में मोर दिखता है, उसको मयूर पाषाण इसलिए कहते हैं कि इसके जितने पहलू है सभी में मोर की प्रतिबिंब उठती है। जैसे एक मोर कला करके नाचता है तो उनके सभी पहलों में मोर का नृत्य दिखाई देता है, सारे पत्थर में, जैसे ये अपने कांच का काम है ना, तो उसमें खंभा है पूरा कांच का समझ लो, टुकड़ा टुकड़ा नहीं देखो, तो जितने भी पहलू उसमें सब में प्रतिबिंब उठेगा, तो सारे मयूर प्रशांत में बहुत से मोर नृत्य करते हों, एक साथ सैकड़ों मोर नृत्य करते हैं, ऐसा दिखने में आता है। तो कहते हैं कि जो मोर को देखते हैं वो पाषाण को नहीं देखते हैं। क्या मैंने मोर को देखने का दृष्टिकोण जिसकी नजर में है वो पाषाण को नहीं देखते हैं, और जो सिर्फ पाषाण को देखेगा वो मोर को नहीं देखेगा, क्योंकि पाषाण में मोर है ही नहीं। वो पर्याय भी पाषाण की है, जहां प्रतिबिंब उठता है वो पर्याय भी पाषाण की है। तो उसने दृष्टिकोण क्या अपनाया कि पाषाण को देखने का, तो मोर को नहीं देखता है। ऐसा निज में वो बात इस तरह आई है अनुभव प्रकाश में कि निज में निज को देखने से निज ही दिखता है, पर दिखता ही नहीं, क्योंकि निज में पर है ही नहीं। और निज में पर देखने से निज नहीं दिखता है, अकेला पर दिखता है। यह हालत होती है कि नहीं मिथ्या अवस्था में, कि निज में पर को जो देखता है वो पर में उतना आसक्त होता है कि उनको स्वयं नहीं दिखता। और जो ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है कि निज में अपने को देखता है तो पर का प्रतिबिंब आते हुए भी वो पर को नहीं देखता, स्वयं को ही देखता है, इतना पर गुण हो जाता है। ऐसी बात है, मैंने बात अपने अपने विवेकशा से है, अपने ढंग से है, जैसी है वैसी समझनी चाहिए। ये अध्यात्म का वचन है, पर नहीं दिखता है वो अध्यात्म का वचन है। और अब गुजराती पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते ना, गुजराती पढ़ सकते हो? ये हमने तत्वानुशीलन जो है, तत्वानुशीलन है, उसमें आठ प्रकरण लिखे हैं, उसमें आठवां प्रकरण ज्ञान का लिखा है। उसमें ज्ञान के जितने भेद प्रभेद और वचन प्रयोग है उसमें करीब करीब ले लिए हैं, इनकी चर्चा भी करी है, तो आप देख लेना, इनके पास है, विजय भाई को दिया है अनुवाद करने के लिए हिंदी में, गुजराती में से हिंदी का।
पर तो जानना इस प्रकार से एकांतता नहीं है, इसी प्रकार से पर का अनुभव करना, ये तो एकांत पर का अनुभव करना असत्य, ये तो एकांत कर सकते हैं।
हाँ,
इसमें तो कोई अनेकांत
नहीं है। ऐसे तो पर का कुछ नहीं कर सकता है वो भी एकांत है, पर को नहीं भोग सकता है वो भी एकांत है। हाँ, सम्यक एकांत, वो तो वस्तु का स्वरूप है, वो तो वस्तु का स्वरूप।
प्रश्न है
जी,
एक प्रश्न है,
बोलिए।
आलम में कहता है जब ग्रंथों में जो पश्चिदी अपान और दूसरे आता है जो जामन भी अपान, तीसरे आता है जो जिद्दा भी अपान,
जो
जिद्दा भी वो जो ना जो जिद्दा भी अपान, तो जगत जो पश्चिदी अपान और जो जाना भी अपान और जो जुद्धा भी अपान, तीनों एक का क्या मतलब? ज्ञान का विषय तो भिन्न है, फिर जो जाना भी अपान जिसका विषय एक क्यों है, ये तीनों का विषय एक क्यों है?
ऐसा है कि श्रद्धा भी अपने को विषय करती है, मैंने अपने स्वरूप को श्रद्धान में लेती है, उपस्थि लेता लिया। ज्ञान भी अपने स्वरूप को अपने रूप जानता है, सम्यक ज्ञान, अनुभव ज्ञान, वो जाना थी अपान, और उसमें लीनता हुई, मेरे सभी गुण स्वरूप में का ही अवलंबन करने लगता है। सम्यक अवस्था में सभी गुण अपने स्वरूप का ही अवलंबन लेने लगता है, तो कोई भी गुण से बात करो क्या आपत्ति है उसमें? कोई आपत्ति नहीं।
भाव आपत्ति
कल का वर्तमान का भावना ये तो हो गई होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो भाव और शक्ति भी है, अभाव और शक्ति भी है। तो चित्रकार का वर्तमान भावरूप होना, जैसे वर्तमान का भावरूप जो श्रद्धा है, ज्ञान है, चारित्र है, आनंद है, तो इनका वर्तमान में भाव तो हो ही रहा है अपने ऑटोमेटिकल। अब अपने को प्रतीदि में नहीं आ रहा कि ये सब गलत होगी। चित्रकार जैसे वस्तु चित्रकार होते हैं तो उसका वर्तमान भी शुद्ध होना चाहिए। शक्ति बढ़ी है ना, शक्ति का भाव तो वर्तमान में शुद्धि होगा। श्रद्धा में जो श्रद्धा है चित्रकार होते तो उसका वर्तमान भी शुद्धि होना चाहिए।
तो जो इस शक्ति के धरने वाला आत्मा का स्वीकार करता है उसका तो परिणाम भी शुद्ध ही होता है। क्या जिसने इस शक्ति के धरने वाले आत्मा को स्वीकार किया उसके तो परिणाम शुद्ध ही होते हैं, उनके कहाँ अशुद्ध हो। समाधान का विषय है जो आगम हमारे असमाधान को मिटाने वाला साधन है, वही आगम हमारे नए असमाधान को पैदा कर देगा। ये बात हो जाएगी।
उसमें एक बात भी आती है, द्रव्य गुण शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध। जब पर्याय द्रव्य गुण का मिटा करती है तो उसमें द्रव्य गुण शुद्ध पड़े, तो जब पर्याय को मिटा करती है तो फिर दुखी प्रतीत में आ जाए। तो ये तो हुआ सम्यक घटन का विषय। सम्यक चारित्र का जहाँ तक सवाल है तो उसका पर्याय है अशुद्ध है।
सम्यक चारित्र में पर्याय शुद्ध भी है, उतना ही अपनी पर्याय है, और जितनी अशुद्ध है वो अपनी नहीं है। राग से राग है सो मैं नहीं हूँ। सम्यक दर्शन भी बोलेगा और सम्यक चारित्र में तो आप चारित्र न पूर्ण अशुद्ध है न पूर्ण शुद्ध है। पूर्ण अशुद्ध हो तो साधक दशा हो ही नहीं सकती। हाँ कथिंचित उसको अशुद्ध मानो, लेकिन उसको स्वीकार स्वयं के रूप में करना है या क्या करना है। अगर ठीक है, हाँ नहीं, उनका भाव तो जो सहज रूप से आएगा उसको करना ऐसा कहा है। कोई कर्तृत्व बुद्धि से तो कोई बात उपदेश में चली नहीं। हाँ जिसको साधक दशा में वीतरागता उत्पन्न होती है उसको इतना राग का अभाव होता ही है, और उस राग के अभाव होता है उसके पहले उनका प्रत्याख्यान प्रतिज्ञा आदि करने का विकल्प पहले आ जाता है, क्योंकि विकल्प में दृढ़ता होने के बाद निर्विकल्प दृढ़ता आती है। विकल्प में भी शिथिलता रही तो निर्विकल्प दृढ़ता तो आने का संभव ही नहीं रहता। यही कारण है इसका। इसलिए जो जैसा है वैसा मानना है उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन हमारा प्रयोजन में विरोध नहीं आना चाहिए। जब हम हमारे दोष का स्वीकार करें तो भी हमें निर्दोष होने के लिए स्वीकार करना है। जब हम हमारे दोष को आत्मस्वरूप नहीं माने, उसको परतत्व माने, अपने रूप उसको स्वीकार नहीं करे, तो भी हमें हमारे निर्दोषता का ही प्रयोजन सिद्ध करना है। तो जब दोष को स्वीकार करते हैं तब भी निर्दोष होने के लिए, और दोष का निषेध करते हैं अस्वीकार करते हैं तब भी निर्दोष होने के लिए, हमारा प्रयोजन तो कहीं बदलता नहीं। बच्चे को प्यार करते हैं तो भी अपनापन रहता है, और बच्चों को हम मारते हैं कभी थपका देते हैं तो भी उसमें अपना ममत्व ही काम करता है, दोनों जगह ममत्व ही काम करता है, तो प्रयोजन थोड़ा बदलता है इसमें।
प्रत्येक पर्याय प्राग भाव अवसर दुर्गा भाव से प्रभावित रहती है, तो संस्कार पुण्य दर्शन में काम कर रहा है, पुण्य दर्शन की शक्ति है, वो प्राग भाव से दुर्गा भाव से प्रभावित होने की वजह से वो आप संस्कार कैसे पुण्य दर्शन।
ऐसा एक प्राग भाव में पहले वाली पर्याय से दूसरी पर्याय का अभाव है, लेकिन ये संस्कार है, ये योग्यता के रूप में, क्या योग्यता के रूप में द्रव्य रूप पड़ा है, पर्याय रूप नहीं है। मैं क्या द्रव्य रूप है, जैसे भव्यत्व है वो द्रव्य रूप है, अभव्यत्व है वो द्रव्य रूप है ना, उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं, गुण पर्याय नहीं कहते हैं। गुण पर्याय अलग चीज है, द्रव्य पर्याय अलग चीज है, क्योंकि द्रव्य पर्याय हो द्रव्य का कैरेक्टर है, गुण पर्याय हो गुण का कैरेक्टर है, ऐसे। तो यहाँ ये द्रव्य पर्याय है कि इस द्रव्य की योग्यता बदली हुई है। जैसे कोई सादी मिथ्या दृष्टि है और कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि तो एक सा है, लेकिन उस द्रव्य की योग्यता ऐसी बदली हुई है कि वो स्वयं जैसे कैसे भी फिर से दोबारा मोक्ष मार्ग में आ जाएगा, वो अनंत काल रुलने वाला नहीं है। ऐसे जिसको संस्कार डल गया, जिस पर्याय में डल गया, वो पर्याय व्यतीत हो गई और वो प्राकभाव में उसको गिन सकते हैं। लेकिन जो संस्कार है जिससे आत्मा संस्कारित हो गया, ये द्रव्य पर्याय है, वो संस्कार पर्याय रूप में नहीं खड़ा है, क्योंकि वो तो प्रागभा हो जाती है।
द्रव्य में तो कुछ मिलता है जुड़ता नहीं,
हाँ
द्रव्य में तो द्रव्य तो त्रिकाल एक रूप रहता है, उसमें योग्यता कैसे मिलता है।
त्रिकाल एक रूप भी रहता है और अनेक रूप भी रहता है। अच्छा, अगर अनेक रूप नहीं रहता तो मैं एक प्रश्न करूंगा आपको कि सर्वज्ञ ने ये कैसे जाना कि यह जीव दसवें भाव में ऐसा राग करेगा, कैसे जाना? ध्रुव में राग था, ध्रुव में राग है क्या? वो तो एक रूप है। तो यह जीव आज से फलाने दिन में इस प्रकार का राग करेगा, वो सर्वज्ञ कैसे जानता है? गेय को कुछ रूप में सद्भाव है तो जानता है कि गेय का सर्वथा अभाव होने में ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान किस में कैसे होता है?
उस समय की पर्याय की योग्यता के हिसाब से।
तो योग्यता कितने प्रकार की हुई द्रव्य में? जितनी पर्याय हैं उतनी प्रकार की योग्यता हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो एक रूपता कहाँ रही द्रव्य की? तो एक रूपता भी है और अनेक रूपता भी है, ये तो बहुत भरा है द्रव्य में, इतना भरा है, इतना भरा है कि उनको सही तरह उनका चारों पड़खों से ज्ञान करना चाहिए। एक बात पकड़ के बैठ जाएंगे तो दूसरी बात में बाधा आने वाली है ही, बाधा आ जाएगी। ये विषय चला है धौला में, चला है उसको महावीर सेन स्वामी ने ऐसा कहा कि ये कारण शक्ति है, ये बात लिया है राजमल जी ने भी लिया है, राजमल जी ने लिया है 116 नंबर के कलश में, टीका में, कलश टीका 116 नंबर की पढ़िएगा आप। पर्याय परिणमन शक्ति, विभाव के कारण कौन से हैं, क्योंकि निमित्त कारण तो द्रव्य कर्म का उदय है, और अंतरंग कारण कौन सा है? तो अंतरंग कारण तो कोई विभाव करने का गुण नहीं है, लेकिन विभाव पर्याय परिणमन शक्ति से विभाव होता है। पर्याय परिणमन शक्ति मैंने परिणमन करने की योग्यता, तो ऐसी योग्यता अनेकों प्रकार की संसारी जीव में पड़ी है, वो अपने स्वकाल में बाहर आती है। चारित्र गुण शुद्ध है, लेकिन चारित्र गुण के में फलाना प्रकार का राग होना और उस काल में होना, ये कहां से देखा सर्वज्ञ ने कि उनकी योग्यता ज्ञान में आई, वो देखी है। जिस जीव की ज्ञान ज्ञान में योग्यता आ गई तो उसको कारण योग्यता कहते हैं। और वही पर्याय फिर द्रव्य क्या हो, लीन होकर विलीन होकर क्या गई, कहां गई कि द्रव्य में गई, इस कार्य योग्यता उसको कहते हैं। आज भी हम कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी अभी सिद्धालय में होते हुए भी, और अभी इनके कोई माता पिता नहीं होने पर भी, वो त्रिशला देवी के पुत्र थे, ये आरोप अब भी आ सकता है कि इस द्रव्य पर नहीं आ सकता है, कि आ सकता है कि ऐसी एक योग्यता भूतकाल में थी 2500 साल पहले कि उन्होंने त्रिशला माता के से जन्म लिया था, तो वो बात रह गई कि नहीं रह गई, इस द्रव्य में इस योग्यता रह गई कि नहीं रह गई, उसको कार्य योग्यता कहते हैं। बहुत सूक्ष्म प्रकरण चला है धवला में, ये गुरुदेव के पास बहुत चर्चाएं चलती थी ऐसे। ये हमारे वो विमल चंद जी करके थे, वो धवला के बहुत अभ्यासी थे, बहुत तगड़ा सूक्ष्म था इनका, ये चर्चाएं ऐसी चलती थी।
कैसी योग्यता होती है का विषय
ना, ये द्रव्य दृष्टि का विषय नहीं, ये ज्ञान का विषय है। दृष्टि का विषय एक रूप है, ज्ञान का विषय अनेक रूप है, ऐसा लेना ये बात है।
हजार पचास परसेंट दोनों को माने तो
सब 100 का 100% है, दोनों 100% है। देखिए, एक आदमी अपने पिता का पुत्र कितना परसेंट है, 100 के 100%, और अपने पुत्र का पिता वो भी 100%, अपने मामे का भांजा के वो भी 100%, और अपने भांजे का मामा वो भी 100%। जिस पक्षा से जो पदार्थ है वो 100 के 100% है, इसमें परसेंट कम होता नहीं है। आत्मा ज्ञान शक्ति से ज्ञायक स्वरूप 100 का 100% है कि नहीं, और सुख शक्ति से सुख रूप भी 100 का 100% है, ऐसा है। जी हाँ, होता है, हाँ, अपनी अपेक्षा से वो 100 के 100% है। जिस अपेक्षा से कहने में आता है उस अपेक्षा से 100 के 100% है, ऐसी बात है। ये दृश्य प्रकाश में लिया है सोगानी जी ने कि जिस अपेक्षा से पदार्थ को कहने में आता है 100 का 100% वैसा ही है वो। अगर ऐसा नहीं होता तो ज्ञान स्वरूप ही अनंत में परसेंट में रह जाता, क्योंकि ऐसा अनंत ही शक्तियां हैं। सुख सुख स्वरूप भी अनंत में भाग में रह जाता है, क्योंकि ऐसी अनंत ही शक्तियां हैं। तो परसेंटेज एक भी नहीं रहता किसी गुण का, एक परसेंट का अनंत में भाग लेना पड़ता, 1% भी नहीं रहता, कोई पदार्थ नहीं रहता, ये हो जाता।
एक तो शुद्ध शुद्ध पर्याय का पिंड है उसमें, और दूसरा एक सर्व के जिसमें कर देते ऐसा चैतन्य भाव
पांच,
तो ये दोनों द्रव्य की परिभाषाएं दृष्टि का विषय की अपेक्षा थी अथवा ज्ञान विषय की।
वो जो सुधाशुद्ध पर्याय का पिंड है वो ज्ञान की अपेक्षा से है, और ये पारिणामिक भाव की जो बात किया जिसमें सभी भेद गर्भित है वो दृष्टि की अपेक्षा से है। क्यों? कि वो पहले निश्चयाभास को ये वो बोध देते थे, वो पर्याय को नहीं मानता था, तो सारा द्रव्य उनको पर्याय रूप दिखा दिया कि पूरा द्रव्य ही पर्याय का पिंड है। तू पर्याय को, एक पर्याय को नहीं मानता है और द्रव्य को मानता है, तो हम तुझे कहते हैं कि सारा द्रव्य ही सभी पर्याय का ही पिंड है। तुमको पर्याय का, उसको ठंडी से जिसको बुखार आई उसको गर्म उपचार करने पड़ेगा, और जिसको धूप लग गई और बुखार आई उसको बर्फ का पोता लगाना पड़ेगा, ठंडी का उपचार करना पड़ेगा। ऐसे जिसको निश्चयाभास की विशेषता हो मिथ्यात्म में, उसको व्यवहार का डोज देना पड़ता है। जिसको व्यवहाराभास की प्रधानता है मिथ्यात्म में, उसको निश्चय का डोज देना पड़ता है। उपदेश दोनों तरह का इसलिए तो चला है। ये उपदेश में विभिन्नता क्यों है? हमारे आगमों में विभिन्न प्रकार के उपदेश क्यों हैं? क्योंकि योग्यता भी विभिन्न प्रकार की होने से किसी को एक दवा लागू नहीं पड़ती। इसलिए शास्त्र के अध्ययन करने वाले को चाहिए कि हमारी दवा कौन सी है, यही उनको सूझबूझ नहीं हो तो दूसरी दवा भी पी लेगा, जो इनके पीने लायक नहीं होगी वो पी लेगा। तो इसलिए सत्पुरुष का योग दिया कि सत्पुरुष कहेंगे कि तेरी दवा वो है, इसकी मात्रा भी वो है और दवा लेने का समय भी वो है, वो इनको पता है, मरीज को नहीं पता है, इसलिए सत्पुरुष का महत्व दिया है।
इसमें जो ये सब दयाकर भेद इसमें गर्भ थे, तो ये तो गर्भित होना चाहिए, ये तो निर्कार के छोड़ दिया जाए, अपर्याय की योग्यता भी इसमें
सब आ जाता है।
प्रमाण
का विषय नहीं लो, वर्तमान पर्याय नहीं लो। जो त्रिकाली द्रव्य लेना है तो वर्तमान नहीं लो, प्रमाण का लेना हो तो वर्तमान लेना पड़ेगी, लेनी पड़ेगी ऐसा। क्योंकि ज्ञान का विषय तो निश्चय नहीं का भी है और प्रमाण सहित होता है। वो ज्ञान का विषय है, उसमें द्रव्य निश्चय नहीं का विषय है और नए प्रमाण समेत होता है। बिना प्रमाण नहीं की प्रवृत्ति होती नहीं, नया भास हो जाता। इसलिए
एक प्रश्न है कि मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है। मिथ्यात्व दो प्रकार का, एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व। तो सम्यक्त्व दो प्रकार का है क्या?
नहीं, मिथ्यात्व है उसमें निमित्त होता है, तो अजीव मिथ्यात्व तो प्रकृति है। दर्शन मोह की प्रकृति जो है उसको हम अजीव मिथ्यात्व कहते हैं, और जीव के परिणाम में जो मिथ्या भाव है प्रधान का, उसको हम जीव मिथ्यात्व कहते हैं। लेकिन सम्यक्त्व जीव के शुद्ध परिणाम है, शुद्ध परिणाम में कोई निमित्त नहीं होता, विभाव में निमित्त पड़ता है। स्वभाव में कौन सा निमित्त है? स्वभाव में कोई निमित्त नहीं है।
केवल ज्ञान को भी तो पर निमित्त तक कहा है,
वो तो गेयों की अपेक्षा से हैं, गेयों की अपेक्षा से हैं। लेकिन केवल निज स्वभाव का अखंड वर्ते ज्ञान कहिए, केवल ज्ञान सो देह छता निर्वाण, उसमें कोई निमित्त नहीं। स्वरूप ज्ञान में कोई निमित्त नहीं, स्वरूप श्रद्धान में कोई निमित्त नहीं, वितरकता में कोई निमित्त नहीं, राग में निमित्त अवश्य है, वितरकता में कौन निमित्त है? कोई
आवरण
क्या कि अनुदय परिणाम है वो, उदय में कर्म का उदय निमित्त होता है। लेकिन जो आत्मभाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि शुद्ध परिणाम, वो तो अनुदय परिणाम कहा गया है करणानुयोग में। उदय भाव को उदय के निमित्त से होने वाले और उपशम क्षोपम क्षाई को अनुदय परिणाम कहा है, जो उदय के साथ संबंध नहीं रखता। इसलिए मिथ्यात्व में अजीव प्रकृति होती है, लेकिन सम्यक्त्व में कहाँ से हो? वो तो अनुदय परिणाम है।
इसमें द्रव्य संग्रह में ऐसा आता है कि जीव जीवन और उद्गम भाव बन द्रव्य, जीव मोक्ष
और
भाव मोक्ष दो आता है।
हाँ,
उसको कैसे करते हैं?
उसमें क्षय को निमित्त लिया है।
अच्छा,
स्वभाव को निमित्त बताया है। जैसे क्षायिक भाव है, मोक्ष है वो क्षायिक भाव है, तो उसमें कर्म क्षय निमित्त है, कर्म का उदय निमित्त नहीं है, लेकिन कर्म का क्षय निमित्त बताया है, अभाव रूप निमित्त और सद्भाव रूप निमित्त, ऐसे निमित्त में भी दो प्रकार है, ऐसे अभाव को ले सकते हो, तो उसको अजीव मोक्ष ऐसे कहो कि परमाणु छूट गए, वो परमाणु की पर्याय है, अजीव निर्जरा में परमाणु की निर्जरा है, ऐसे अजीव संवर में परमाणु का आना बंद हो गया है, ऐसे ले सकते हो, लेकिन अजीव सम्यक्त्व नहीं ले सकते। प्रश्न आपका सम्यक्त्व क्या था, अजीव सम्यक्त्व नहीं ले सकते, अजीव ज्ञान नहीं ले सकते, अजीव चारित्र नहीं ले सकते, ऐसे अजीव संवर ले सकते और अजीव निर्जरा ले सकते, अजीव मोक्ष ले सकते, क्या है कि उसमें आगम पद्धति है और इसमें अध्यात्म पद्धति है, जिस कर्म का संबंध से जो विवक्षा की जाए वो आगम पद्धति है करण अनुयोग की, और जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं लिए जाए ऐसे सम्यक्त्व है, सम्यक ज्ञान है, वो अध्यात्म का विषय है, क्योंकि उसमें अवलंबन आत्मा का होता है, अध्यात्म में आत्मा के अवलंबन से बात चलती है और आगम में कर्म के संबंध से बात चलती है, तो ऐसे दोनों पद्धति अलग अलग है, आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति, दोनों पद्धति अलग अलग है।
मोक्ष मार्गदर्शी नेतारम कहा था सुबह, तो सोनभद्राचार्य का है या उमा संगम?
सोनभद्राचार्य का देवागम स्तोत्र, सोनभद्राचार्य कृत देवागम स्तोत्र है, उनकी गाथा है, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम नातारम सर्व तत्वानाम वंदे तद गुण लब्धये, देवागम स्तोत्र में से सुमन भद्राचार्य मंगलाचरण में निकालिए, देखेंगे
इनका जो मौत बहुत प्राप्त जो मां उसके ऊपर लिखा हुआ है।
मंगलाचरण तो किसी भी ग्रंथ का किसी भी ग्रंथ में नहीं लिख सकते क्या? जैसे कि अपन समय सार का है, नमः समय साराय, तो दूसरे ग्रंथ में लिख सकते हैं मंगलाचरण के रूप में, तो किसका? देवागम स्तोत्र है सोनभद्राचार्य का, इसका श्लोक है वो, देख लेना, फिर भी हो सकता है हमारी स्मृति में भी कोई चूक हो, भूल हो।
सत्पुरुष के स्वरूप का प्रकरण चला था, बड़ा सा प्रसन्न नहीं होता है जब तक सत्पुरुष की आगम की उपयोगिता कितने के साथ है।
प्रकरण लंबा छोड़ा है और अपना टाइम तो पूरा हो गया है, कितना लंबाएंगे, कल बरया जी ने सूचना की थी कि जो प्रश्न हैं हमारे वो बाकी रह जाते हैं, खुद के ही रह गए कल, तो इसलिए कोई व्यवस्था बिठाना है, तो ऐसा करिए कि शाम को जो एक घंटे का स्वाध्याय दस लक्षण धर्मों पर होता है, ये मेरा सुझाव था, जो व्यवस्थापकों हैं उनसे आप लोग, मैं नहीं कहूँगा, आप लोग रिक्वेस्ट करिए कि आधा घंटा है वो प्रश्न चर्चा
की थी, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि ना तो उसके साथ में चलिए प्रश्नों का ही समाधान पूरा हो पाता है और ना उसके पश्चात जो आपके हमको शब्द सुनने को मिलने वाले हैं धर्म के ऊपर, धर्म लक्षण के ऊपर उसमें भी त्रुटि हो जाएगी, वो भी आधा होकर के बंद हो जाएगा, न वो रह पाएगा न वो रह पाएगा। तो अच्छा, मेरा तो ऐसा है एक दिन दो दिन जितने भी हैं जो प्रश्न शेष रह जाते हैं वो पहले दूसरे दिन आ जाए, बाकी के प्रश्न बाद में हो।
जैसा भी आपको उपयुक्त लगे ऐसा कर सकते हो, व्यवस्था तो आपको बिठानी है, हम तो हमारी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे और क्या। अब वो अपना अपना प्रकरण है, अपना अपना प्रकरण में क्या है कि बनारसी दास जी ने ये लिखा कि आत्मा के आधार से जो उत्पन्न हो वो अध्यात्म है और आगम का आधार परमाणु है, आत्मा नहीं है, ऐसा कर लिखा है। तो उसमें क्या है कि द्रव्य कर्म नौ कर्म ये आगम का विषय होता है और आत्मा है वो अध्यात्म का विषय होता है। अपना प्रकरण ही अलग अलग है तो एक प्रकरण में दूसरे प्रकरण को मिलाने से क्या
फायदा। और वास्तव में आत्मा खबर प्रकाश का सब कुछ जानता भी है, दो बात और दोनों एक दूसरे बात है। तो हम तो ये समाधान कर लेते हैं,
नहीं ऐसा नहीं है, सफर प्रकाशक जो निज शक्ति है वो अध्यात्म का विषय है, शक्ति है वो निश्चय स्वरूप है आत्मा का। उसमें क्या है कि ज्ञान नय और कथन नय, नय के दो भेद हैं, क्या एक ज्ञान नय और एक वचन नय, शब्द नहीं कहो, वचन नहीं कहो, कथन नहीं कहो। तो कभी वचन नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, ऐसा कभी बनता है। जैसे कि मैं दृष्टांत दूं आपको, नियम सार के सदुपयोग अधिकार की पर शुरू से गाथा चली है, उसमें स्वयं प्रकाशक की बात चली है नियम सार में, तो वहां आचार्य महाराज ने वो बात कही है कि केवल ज्ञान है वो निश्चय नहीं से पर को जानता है और केवल ज्ञान व्यवहार निश्चय नहीं से स्व को जानता है और व्यवहार नहीं से पर को जानता है। तो ये कथन नहीं है, शब्द नहीं है, ज्ञान नहीं वहाँ है ही नहीं, वहाँ ज्ञान नहीं की उपस्थिति नहीं है केवल ज्ञान में, क्योंकि केवल ज्ञान को नय होता ही नहीं, ये तो शुद्ध ज्ञान का अवयव है ये तो। अब पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे, विद्वान लोग पंडित लोग, हमारे मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में हमारे एक विद्वान पढ़ रहे थे नियम सार को, मेरा कोई बिजनेस के हिसाब से मुंबई जाना हुआ, आज से आप जितने दिन ठहरेंगे पढ़ें पढ़ना, मैंने कहा क्या पढ़ेंगे, तो कहा हमारे ये नियम सार चल रहा है, वो एक दो गाथा चल चुकी थी, उन्होंने आप प्रारंभ से ले लीजिए इस अधिकार को, तो 159 नंबर की पहली गाथा है वो, तो उसमें वो है कि केवल ज्ञान निश्चय नहीं से अपने आत्मा को जानता है, व्यवहार नहीं से लोकालोक को जानता है। तो मैंने तो मेरा प्रवचन ही यहाँ से प्रारंभ किया कि केवल ज्ञान को न्याय होता ही नहीं, ये तो शब्द की बात है, ये शब्द नहीं है, वचन नहीं माँ, ज्ञान नहीं होता ही नहीं माँ, पूछो के हमने तो ये बात विचार में ही नहीं लिया कि केवल ज्ञान को नई नहीं है, तो यहाँ कैसा लिखा, जब केवल ज्ञान में नई उठते ही नहीं, नहीं पढ़ते ही नहीं, तो यहाँ टीकाकार ने लिखा कैसे केवल ज्ञान नई से जानता है, कि वचन की बात है, कथन की बात है क्या। ऐसे पर प्रकाशक पने में व्यवहार कहते हैं और निश्चय भी कहते हैं, दोनों आता है उसमें क्या। तो तो निश्चय आता है वहां शक्ति लेनी है, और जहां व्यवहार लागू पड़ता है, को पर को जानता है सो व्यवहार है, वो स्व जानता है निश्चय से, बल्कि कथन में पर का वो कथन कहना करना पड़ता है, इसलिए उसको व्यवहार कहा। या पर को जानता है फिर भी तन्मय होकर के सम्यक ज्ञान नहीं जानता है, इसलिए उनको व्यवहार कहा। ऐसी विवक्षाएं अलग अलग है इसमें, बहुत सी बातें हैं, कहाँ तक कहेंगे।
नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था वो बात होती है, तो ये है कि आत्मा पर को जानता है और आत्मा पर को नहीं जानता है, ये दो तो ये हम व्यवस्था करके हम आपस में समझ सकते हैं, जैसे आपने समझा। अब सवाल ये है कि जैसे ये पर्चे बढ़ जाते हैं कि आत्मा में पर आत्मा पर को नहीं जानता, तो कोई जानता वैसे पुष्ट अगर ले जाते हैं तो देखने वाले के अंदर ये चंदा पैदा होती है, उनका ध्यान रखू जैसा पर भी नहीं जानता।
पोस्टर देखने वाले को अपना तो योग्यता होनी चाहिए, किसी भी आगम की बात के समझने की योग्यता तो अपनी स्वयं की होनी चाहिए। जैसे सारी दुनिया ये कहती है कि हम अनेक प्रकार के शरीर के, वचन के, हमारे घर के, दुकान के, समाज के बहुत काम करते हैं, हमने इसका इतना उपकार किया, क्या हमने हमारे परिवार को पालन पोषण किया, हमारा आगम क्या कहेगा कि आत्मा किसी का कुछ नहीं कर सकता, तो सारे दुनिया के सामने